उमेर साहब, वी आर लाइव। देखे जी, उमेर साहब को पकड़ पकड़ के मैं ले आया हूँ। शादियाँ ये फोड़ते रहे अपने दोस्तों की और मुझे डिच कराते रहे हैं। लेकिन मैंने कहा यार, कल मुझे बड़ा लोनली लोनली फील हो रहा था। काफ़ी लोग भी पूछ रहे थे कि भाई ये उमेर साहब कहाँ है, उमेर भाई कहाँ है। मैंने कहा यार, वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं और मैं इधर बैठ के काम कर रहा हूँ। तो उमेर साहब, अब फोड़ लिए शादियाँ, अब क्या सीन है आपका?
यार बिल्कुल यार, शादियां वादियां फोड़ ली हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में वेट भी गेन हो गए हैं 4-5 दिन खापे करके। बाकी कल मैं आपका सेशन देख रहा था जलाल, बड़ा फिट सेशन किया आपने, पीजीएल पे डिस्कशन की और भी आपने जो जो आजकल ट्राई सीरीज हो रही है उस पर डिस्कशन की। लेकिन चले, वो चीजें तो हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, जिसको सुन के मैं तो बड़ा खुश हुआ। तो वो खबर क्या है कि जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो बना है वो कौन है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा एक अप्लॉज भी करें, और ताकि एक वो खुशी का हमारे लिए मौका है। क्या कहते हैं?
बिल्कुल यार, सबसे पहले तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए अनाउंस हुए हैं मोहम्मद रिजवान साहब, तो उनके लिए
ये बिल्कुल
क्या बात है यार। मतलब कंसिस्टेंसी का लफ्ज़ और मोहम्मद रिजवान का लफ्ज़ साथ साथ चलता है, ठीक है। इनसेन किस्म की बंदे की कंसिस्टेंसी है। क्रिटिसाइज भी होते हैं, हम लोग भी कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, स्ट्राइक रेट के ऊपर उनकी बातें आती हैं। लेकिन जब आप उनकी ओवरऑल कैरियर को देखो, ख़ास तौर पे अभी न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज चल रही है, तो न्यूजीलैंड पे जब उन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम उनका अगर आप रिकॉर्ड देखो और अब रिकॉर्ड देखो, वो उसकी एक स्नैपशॉट भी चल रही है
भी ना
बिफोर एंड
सके।
आफ्टर वाली, तो यार
हाँ
मतलब कमाल
बिल्कुल
है, कमाल है, जितनी तारीफ की जाए कम है।
बिल्कुल यार, बिल्कुल कमाल। हाँ नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमाल है। मुझे वो टाइम भी जलाल याद है कि जब मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर रहा था, सही है, उसकी सिलेक्शन पे काफी ज्यादा प्लेयर्स बातें करते थे कि यार मोहम्मद रिजवान को टीम में कहाँ रखे, जगह नहीं बन रही, जगह नहीं बन रही। उस लेवल से आके और आज देखे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बना है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ ही मेरा एक सवाल है आपसे, आप मुझे बताएं कि आपने देखा होगा पिछले दिनों एशिया कप के बाद से, एशिया कप में भी इवन काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था मोहम्मद रिजवान पे कि यार ये स्लो एवरेज है, इस तरह है, उस तरह है। तो आप बताएं कि वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसा देखते हैं कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था इस पे ज्यादा। और
बिल्कुल
दूसरा जो मेरा पॉइंट ये है कि दूसरा जो मैच विनिंग इनिंग्स इसने खेली है, नो डाउट काफी अच्छी, मुझे भी याद है एक दो, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ वो मेमोरीज ले आए मोहम्मद रिजवान की, कि जिससे हमारे लिए और ना हम लोग थोड़ा और वो प्राइड फील करें मोहम्मद रिजवान के लिए।
बिल्कुल यार, देखो जिस तरह आप कह रहे हो, क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ उनके ऊपर उनकी स्ट्राइक रेट की वजह से। ख़ास तौर पे जो एशिया कप का उनका फाइनल में इनिंग्स थी, उस पर हम लोगों ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि यार क्या रिजवान साहब ने खेल लिया है और बहुत ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करके बहुत कम रन्स बने हैं। तो क्रिटिसिज्म तो ये इन पर और बाबर पर होता रहता है। लेकिन अगर आप ऊपर से 360, जिसे आप टर्म ये यूज़ करते हो, 360 डिग्री व्यू अगर हम देखें इसका,
बिल्कुल
तो रमीज राजा साहब भी ये कहते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान जीता है, ठीक है। और फिर कंसिडर करेंगे जी, हमारे मिडिल ऑर्डर में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है। बल्कि टीमें तो अब पाकिस्तान के साथ इस तरीके से खेल रही होती हैं कि भाई बाबर और रिजवान को आउट कर दिया तो पाकिस्तान मतलब हार जाएगा, सही है। तो उस प्रेशर के
ऐसे
साथ
ही है।
खेलना और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ खेलना, तो एशिया कप के बाद उमेर साहब इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। जो आप इनिंग्स की बात की आपने, इंग्लैंड की अगर आप पूरी सीरीज उठा के देख लो, स्ट्राइक रेट रिजवान का अच्छा था। और अभी भी जो
बिल्कुल
पहला मैच हुआ था हमारा बांग्लादेश के साथ, उसमें भी ट्राई सीरीज में
बिल्कुल
रिजवान की एक्सेप्शनल इनिंग्स थी, वही एक लग रहे थे प्लेयर सही वाले। तो मैं
बिल्कुल
तो यही बोलूंगा
सही
यार
बात
कि जबरदस्त खेल रहा है, क्या कहते हो?
बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं भी आपसे एग्री करूंगा, बहुत जबरदस्त खेल रहा है। बल्कि मैं तो जलाल, जब एशिया कप में आपने देखा बाबर आजम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं समझा शायद मोहम्मद रिजवान वहां पे डाउनर आ जाए, उनको थोड़ा ना डीमोटिवेट हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में वो उन्होंने अच्छा खेला काफी, मतलब कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया किसी भी चीज का। इवन आपको वो मैच याद होगा जो पाकिस्तान, वो जिस मैच में उसने डेब्यू किया था आमिर जमाल ने, जिस मैच में मोहम्मद रिजवान ने एक इनिंग खेली थी
हाँ हाँ हाँ
स्लो
हाँ
स्लो, तो वो भी बड़ी यार आउटस्टैंडिंग थी, बड़े मजे की इनिंग थी। तो बस अल्लाह करे वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही चलता रहे, बस थोड़ा स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेहतर कर ले, बाकी तो फिट सीन है, शुक्र है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी मौके पे हमारे जो यूजुअल देखने वालों में से हैं, हमारे क्रिकेट फीवर भाई, वो भी हमें सलाम कह रहे हैं। वालेकुम
वालेकुम
अस्सलाम क्रिकेट फीवर भाई।
अस्सलाम।
क्या हालात चल रहे हैं सर जी, क्या हालात चल रहे हैं, ज़रा बताएं कि आजकल क्या आपकी मसरूफियात चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम, मैंने देखा है काफ़ी आप एक्टिव हुए हैं, चीज़ें वीज़ें पोस्ट हो रही हैं क्रिकेट पे, तो कैसा चल रहा है वो? अजय उमैर साहब,
नहीं बिल्कुल, इनका कंटेंट जी, बस मैं कह रहा था, हाँ इनका अच्छा कंटेंट है।
बिल्कुल
मतलब कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वो आ जाती है इनके इंस्टा पे। तो जी
बिल्कुल
आप कुछ
बिल्कुल,
पूछ रहे थे जलाल।
मैं ये बोल रहा था कि रिजवान पर तो हमने बात कर दी, और काफ़ी अच्छा लगा कि यार हमारे प्लेयर भी अब आईसीसी के इवेंट्स में ऊपर आते जा रहे हैं। एक और प्लेयर है जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, हम भी करते हैं कभी कभी, वो नन अदर देन हमारे प्यारे कप्तान हैं, ठीक है, उनका नाम है बाबर आजम। अब उनके ऊपर दुनिया
बिल्कुल
बड़ी क्रिटिसाइज कर रही है आजकल, ख़ास तौर पे भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आफ्ताब इकबाल साहब है हमारे, वो टीवी के ऊपर आते हैं काफ़ी, वैसे बैलेंस गुफ्तगू नॉर्मली तो वो करते हैं और काफ़ी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन वो लगता है कि क्रिकेट के जज्बात में ज़रा बह गए जो फैंस के जज्बात नहीं होते तो
बिल्कुल
उन्होंने तो बाबर आजम को रगड़ दिया, कहते हैं कि वो अब कोई स्टार नहीं है। क्या आपके इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है?
यार, मेरा मेरा तो पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको स्टार की डेफिनेशन की शायद थोड़ी सी खराब है। तो देखिए, हम लोग भी जलाल, आपको भी याद होगा, हम लोगों ने बाबर आजम की जो टेक्निक पे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, उसकी बैटिंग पे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी कैप्टेंसी पे बातें की हैं। और बाकी उसके अलावा यार, स्टार तो वो है, और वही पाकिस्तान का आखिरी स्टार, मतलब वही पाकिस्तान का स्टार है और वही लेके चल रहा है, तो इसका ये
अब
सीन
बस
है जी।
आखिरी स्टार ना बोलना, लेटेस्ट स्टार अभी वही है।
सही
मतलब हम
बात
तरस गए थे आखिरी 10 सालों में कि अगर आप 10 साल पीछे जाते हो कि हमें उस तरीके से स्टार्स नहीं मिलते थे, अब बाबर आजम है,
जी।
शाहीन है, शादाब है, ठीक है, तो आपके पास अब नसीम भी आपको नज़र आता है कि उसके अंदर एक स्टार बनने की कैपेबिलिटी है, तो प्लेयर्स तो आपको नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान है, इतना बड़ा स्टार है अब तो वर्ल्ड क्रिकेट का। तो इन्होंने जो बात की ना वो की मेरे ख्याल पर्सनल लेवल पे ये ले गई कि जिस तरह हमने कहा कि बाबर आजम कभी कभी कैप्टनसी में स्टबर्न हो जाता है और वो उस तरह के डिसीजंस नहीं लेता, ठीक है, जिस तरह शादाब को लास्ट मैच में ऊपर भेजा, वो हम कब से कह रहे हैं कि ऊपर भेजना चाहिए था, लेकिन जिस तरीकेकार से आफ्ताब
बिल्कुल
इकबाल साहब ने उसको जीरो से जरब दे दिया था वही बात है, बात करने का
यार,
तरीका
मेरे
होना चाहिए ना।
ख्याल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल यार, आप एक अच्छे चैनल पे बैठे हो, सही है, आप बात करो, अच्छी बात करो। बड़ा एक अजीब लगा मेरे ख्याल में जलाल, मुझे उनमें थोड़े सारा, मुझे लगा कि शायद वो चाह रहे इस तरह की बातें करेंगे, तो शायद इमाद वसीम की तरफ थोड़े बायस लग रहे थे मुझे,
हाँ
शोएब मलिक की तरफ थोड़े बायस लग रहे थे कि वो ये कहना चाह रहे थे। हालांकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान हारा था सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, T20 का, तो उसके बाद जो उसके बाद जो बाबर आजम ने वो ड्रेसिंग रूम में जो बातें की थी, बड़ी अच्छी बातें की थी, और फिर उसके बाद काफी दफा मैचेस हुए, आई थिंक ये दो मैचेस तो मुझे याद है जिसमें वो मैन ऑफ द मैच बना था, लेकिन उसने अपना अवार्ड किसी और को दे दिया था। तो मेरे
बिल्कुल
ख्याल में ये टीम तो काफी ज्यादा सपोर्ट भी करी होगी बाबर आजम को, क्योंकि क्योंकि आप इसने काफी बैक किया है प्लेयर्स को, तो बड़ा एक अजीब सा कमेंट है। और
यार देखो
खैर, उनके साथ
शायद
काफी अच्छी होगी, उनके साथ काफी ज्यादा होगी है ट्विटर
यार,
पे।
लेकिन मैं ये सोच रहा था, देखो ट्रेंडिंग में भी आ जाते हैं फिर ऐसी बातें करके, मैं सोच रहा था मैं और तू ट्रेंडिंग में कैसे हैं, अब हमें फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसी बातें करनी पड़ेंगी ये अच्छा तरीका नहीं है, नेगेटिविटी फैलाओ और आप ट्विटर के ट्रेंड्स में आ जाओ और हर जगह आ जाओ। खैर एनीवेज ये तो एक लाइटर नोट पे बात है, बात इस तरीके से करनी नहीं चाहिए थी। हाँ ठीक है, आप क्रिटिसाइज करो कि बाबर ने पीछे जो डिसीजंस लिए हैं शायद उनमें से कुछ गलत भी थे, ऑब्वियसली इंसान है उससे भी गलती होगी, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे चले जाना कि स्टार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो तो ये गलत बात है। अच्छा अब
बिल्कुल
इसका जवाब स्टारी का दुनिया ही क्रिकेट ले रही है, मेरा इशारा है कि जी आपने पहले देखा महिला जयवर्धने से पूछा कि जी टॉप 5 आपके T20 के बैटर्स कौन से होंगे या प्लेयर्स कौन से होंगे, उसमें उन्होंने रिजवान का नाम भी लिया, फिर बीच में उन्होंने बाद में एक दफ़ा बाबर का नाम भी लिया, शेन वॉटसन से पूछा उन्होंने बाबर का नाम लिया, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग ने बाबर का जिक्र किया, और अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है क्रिक इन्फो के ऊपर इयन चैपल, सर इयन चैपल ने, ठीक है, उन्होंने अपने टॉप 5 बैटर्स पे एक आर्टिकल लिखा है कि इस टाइम के ऊपर 2019 के बाद अगर हम टॉप 5 बैटर्स की बात करें तो वो कौन से होंगे, उसमें उन्होंने 6 बैटर्स पे बेसिकली बात की है और फिर नेल डाउन करने की उन्होंने कोशिश की है, जो कि वो आर्टिकल अगर आप पूरा पढ़े तो नेल डाउन वो बेचारे कर नहीं सके क्योंकि टफ चॉइस है। मैं आप पे फेंकता हूं, बाबर का ये कंटिन्यू करते
सही
हुए
है
कि अगर आपको टॉप
सही है
फाइव बैटर्स बनाने पड़े अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स
सही
इस
सही
टाइम के ऊपर, कौन से बैटर्स होंगे वो?
अच्छा ठीक है
मुश्किल
अच्छा
सवाल।
मतलब आप ये बहुत ज्यादा मुश्किल है सोचने वाला भी है। अच्छा नहीं आप जो सवाल पूछे इसमें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट मतलब कि कोई ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो
बिल्कुल
या मतलब
बिल्कुल।
कि एक बंदा जो टेस्ट में अच्छा है ओडीआई में अच्छा नहीं उसका भी ले
नहीं, ऐसा
मतलब
प्लेयर
कि तीनों फॉर्मेट्स वो
बैटर
खेलता
रखो,
हो इस तरह
इंक्लूड करो जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं।
जिला जी आपने थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा लेकिन चले मैं बताता हूँ। पहले में तो यार इस पे विराट कोहली ठीक है वो तो उसकी फॉर्म खराब थी 2019 के बाद थोड़ी सी लेकिन मेरे ख्याल में वो है बंदा विराट कोहली फिर भी मानने वाला बंदा।
बिल्कुल
उसके बाद आपका आ जाता है जॉय रूट यार इंग्लैंड का अमेजिंग बैट्समैन बेहतरीन क्लास
अच्छा। अब
ठीक
आपने
है
सेकंड पे जो रूट को रखा है, ये
और
ऑर्डर में
जो
चल
मतलब
रहे हो या
पहले
वैसे बात कर रहे हो?
नहीं, ऑर्डर पे नहीं ऑर्डर पे नहीं चल रहा ये मैं
अच्छा
वैसे
अच्छा
आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ बाहर पहले एक बार प्लेयर्स आ जाए ना माइंड में सारे कोहली हो गया जो रूट हो गया उसके बाद स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का वो भी काफी एक हैवी प्लेयर है। उसके अलावा विलियमसन यार विलियमसन विलियमसन तो मुझे बड़ा पसंद है विलियमसन और आपका बाबर आजम ये आपके प्लेयर हैं जो बैट्समैन मेरे ख्याल में जिनके पास टेक्निक है जिनको प्रॉपर क्रिकेट का पता है कि आपने बॉल किस तरह खेलनी है। स्लॉगिंग इनकी बड़ी कम है जो शॉट आप इनकी देखते हो आप फैन हो जाते हो मतलब कि यार ये एक प्रॉपर शॉट खेल रहे हैं। मुझे याद है टेस्ट मैचेस अक्सर जॉय रूट की खास तौर पे टेस्ट मैच देखते हैं तो बड़ा ड्राई सा लगता है लेकिन जब उसकी बैटिंग देख रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है। तो ये मेरे टॉप फाइव है आप बताएं मतलब आपके कौन है टॉप फाइव और इस पे क्या रिव्यू है आपका।
यार मेरे भी टॉप फाइव यही बनते हैं, लेकिन इसमें अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं तो रैंकिंग वाइज अगर देखा जाए ना, अगर हम सीक्वेंस में चलें, क्योंकि जो रूट T20 क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि आपके स्टीवन स्मिथ के ऊपर बड़े वो हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा है स्ट्राइक रेट का इशू है, और
बिल्कुल
केन विलियमसन के ऊपर भी बड़ा स्ट्राइक रेट का इशू आ रहा है, तो ऑब्वियसली विराट कोहली को मैं रखूंगा। इवन दो 2019 के बाद उनकी फॉर्म बहुत डिप की है, स्टिल मैं उनको नंबर वन पे रखूंगा, क्योंकि एट दिस स्टेज भी वो बैकबोन है इंडिया की। मतलब लोग उनको बिल्कुल जो
ऐसे
है ना
ही
राइट ऑफ कर रहे थे कि यार मतलब ये बंदा निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रूव किया अभी रिसेंट भी परफॉर्मेंस से। तो वन पे विराट कोहली है, टू पे बाबर आजम है क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और तीनों फॉर्मेट में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। तीसरे पे मैं
बेहतरीन है ठीक
रखूंगा जो रूट को। ये
है
T20 क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, लेकिन उसमें रीजन ये है कि उनकी टेस्ट में इतनी कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आ गई है 2019 के बाद, डबल फिगर्स में तो उनकी 100 है सिर्फ तो वो तो बनते हैं। उसके बाद मैं रखूंगा
बिल्कुल
विलियमसन को और फिर स्टीवन स्मिथ को। तो ये मेरा मेरा भी ये टॉप फाइव ही होगी।
नहीं नहीं आपका बिल्कुल जायज है कि शुरू के दो बंदे आपने वो रखे हैं जो कि T20 भी खेल रहे हैं ओडीआई भी खेल रहे हैं और टेस्ट भी खेल रहे हैं तो लेकिन चले शुक्र है हमारे प्लेयर्स मैप कर गए वो भी एक वो एक वो इम्प्रूवमेंट आ रही है ऐसा ऐसा तो
आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। बस
लेकिन
इयान
सही चीज है
चैपल
बिल्कुल
ने मार्नस लबुशेन का भी जिक्र किया इसमें ना, और उन्होंने
अच्छा
ये जिक्र
सही
किया
सही
कि जी आप टॉप फाइव बनाना हो तो बड़ा मुश्किल है, और उन्होंने विराट कोहली को एज द बेस्ट बैटर जो है एंड में दबे अल्फाजों में डिक्लेयर किया उन्होंने। वुडू पार्क साहब कहते हैं PGL देखकर मजा आ रहा है। बिल्कुल सर, यंग टैलेंट देखने को मिल रहा है। इवन दो उमेर साहब PGL पे थोड़ी सी अगर बात करें तो मैंने लास्ट एपिसोड में, क्योंकि मैं काफी लेट की तो मैंने उसमें बात तो की थी, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है यार कि ये PGL पे 1 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई स्पॉन्सर्स उस तरह खातिर खा नहीं है, Under-19 के प्लेयर्स तो हम Under-19 क्रिकेट से भी निकाल सकते थे, तो ये सारा इतना कुछ करने की जरूरत क्या थी? क्या आप इस पे बोलोगे?
यार ये बड़ी अजीब बात है। देखे मैंने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री इवन पाकिस्तान की कोई भी आप निकाले जिसमें विजन डिफाइन किया जाता है तो कोई भी जलाल विजन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म ही होता है मतलब कि शॉर्ट टर्म आप नहीं उसको एग्जीक्यूट कर सकते अच्छी चीज है और
बिल्कुल
जो भी लॉन्ग टर्म चीज होती है उस पे वाली चीज पे हमेशा क्रिटिसिज्म आता है। तो PGL पे क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं लोग वो शायद उनको शायद पता नहीं है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट कैसे चल रही है सही है आपके न्यूजीलैंड की क्रिकेट कैसे चल रही है मतलब वहां का जो आपका यंगस्टर है उसके पास कितनी फैसिलिटीज होती हैं खेलने की। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए शायद वही बात है नेगेटिव जो खबर होती है वो ज्यादा बिकती है लेकिन मैं तो फेवर में हूँ PGL के और मैं ये वाली चीज के लिए रमीज राजा को काफी ज्यादा मतलब के उनको वो करता हूँ,
क्रेडिट देते हैं।
मतलब कि उनको मैं काफी ज्यादा अच्छा, हाँ उनको काफी क्रेडिट देता हूँ। तो आप बताएं, आप पीजीएल के बारे में थोड़ा और भी बता दे, क्योंकि कल भी आपने बताया था, कल वाली बातें भी थोड़ी बता दे
यार
ताकि
मैं तो सिर्फ यही
पीजीएल का।
कहूंगा कि कल भी मैं बात कर रहा था कि जब हम छोटे थे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बैरियर ऑफ एंट्री क्या था क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन लेने में, कि जी हमारे घर वाले कहते थे बेटा टाइम वेस्ट है, इसमें पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एज अ कैरियर आप क्रिकेट को नहीं देखते थे। और फिर ये भी बड़ी बात थी कि जी सिफारिश होती है और सिफारिशी प्लेयर ही सिर्फ जाते हैं, तो मेरिट मैटर नहीं करता, ये हम बचपन से सुनते आते थे। तो हम भी हमारा पैशन आहिस्ता आहिस्ता डाई ऑफ करना शुरू कर देता था कि यार ठीक है क्रिकेट को हम नहीं कर सकते तो पढ़ाई पे फोकस करो। अब ये चेंज कर दिया रमीज राजा ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा कैरियर है जो कि अंडर 19 लेवल पर भी इतने पैसे दे रहा हो। कोई ऐसी जॉब नहीं है, ठीक है,
बिल्कुल
कोई ऐसा बिजनेस नहीं, अनलेस और अंटिल आप किसी करोड़पति बाप के बेटे हो तो एक अलग बात है, लेकिन जो है कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आपको इतने लेवल ऑफ पैसे दे सके। तो अगर एक अंडर 19 का लड़का घर में पैसे ला रहा है तो ना उसके अब्बू कुछ बोलेंगे ना उसके घर वाले कुछ बोलेंगे, बल्कि वो चौड़ा होके घूमेगा, कोई भी उसको ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि तू क्रिकेट खेल के टाइम जाया कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा मुझे इसका
बिल्कुल
एडवांटेज ये
ऐसे ही है,
लगता है, और ये शायद राइट ऑफ कर
बिल्कुल
रहे हैं जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना सारे मीडिया में कि जी क्या फायदा है इसका। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन अब क्रिकेट को एज अ कैरियर देखना शुरू कर देगी, और उससे ऑब्वियसली ज्यादा लोग भी आएंगे, और सबसे बढ़कर पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो क्रिकेट को उस तरीके से आते ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो कहते हैं यार हम हाई पेइंग जॉब्स कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो हम फुकदान देखते हैं कि पढ़े लिखे क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो इसमें ये
बिल्कुल
बोलूंगा।
बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। बल्कि इस पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा, आपने स्कूलिंग की बड़ी अच्छी बात की कि इनको स्कूलिंग की भी फैसिलिटीज मिल रही है, और बल्कि जलाल स्कूलिंग की काफी अच्छी फैसिलिटीज है। एंग्रो वालों ने इनको स्पॉन्सर किया है, और इनकी स्कूलिंग आई थिंक सिटी स्कूल की है, बिकन हाउस की है, वो वाला करिकुलम है, वही वाली फैकल्टी है सारी। तो मेरे ख्याल में काफी अच्छी चीज है, मतलब इस तरह की चीजें, वही बात है, हमारे दौर में होती तो शायद आप खेल रहे होते, हम खेल रहे होते।
बिल्कुल यार, हमें अब यही रोना रहेगा कि हम खेल रहे होते। अच्छा वुडू पाक साहब कह रहे हैं, मुझे पूरी समझ नहीं आई आपके कमेंट की, लीग में अटैकिंग बैट्समैन निकलते हैं, जाओ तुम लोग, हमारी आवाम को अकल कब आएगी। मेरा जो मुझे समझ आई वो ये आ रही है कि इन ऐसी लीग से अटैकिंग बैट्समैन निकलते हैं और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको शायद आप कहना चाह रहे हो अकल कब आएगी, या हमें अगर कह रहे हो तो वो भी बता दो, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा एनीवेज उमर साहब, बाबर पे बात तो हो गई कि स्टार तो वो है क्योंकि पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, अंकल आफ्ताब तस्लीम करें या ना करें वो मैटर नहीं करता है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। अच्छा ये फिर इन्होंने लिखा
ऐसा ही,
है, लीग
बिल्कुल
में
ऐसा
अटैकिंग
ही है।
बैट्समैन निकलते हैं, हमारी आवाम को अकल कब आएगी। हाँ ठीक है, देखो मतलब हमें नहीं कह रहे, ये आवाम को क्या सही होगा।
शुक्र है, रेनी बात सही करे यार, मतलब आवाम को अकल, यही बात है कि इसी तरह अवेयरनेस फैलेगी बुडू भाई, के बंदा बातें करता रहे इस बारे में, और स्प्रेड होती रहे चीजें।
मेरा ख्याल है जनरल अवाम को तो अकल आई हुई है, लेकिन मीडिया हमारी किसी एक स्पेसिफिक एजेंडे पे चलता है क्योंकि उनको शायद लगता है कि नेगेटिविटी सेल होती है, तो वो बस फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करते हैं। एनीवेज उमेर साहब
बिल्कुल
जहां
अच्छा
पे
जलाल, एक और सवाल मेरे, एक और मैं कल गया हुआ था शादी पे एक, ना तो वहां
अच्छा
पे डिस्कशन हो रही थी काफी, उनकी भी डेप्थ थी नॉलेज की काफी क्रिकेट में। तो वो कहते हैं कि भाई आपके जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, फॉर्मर वगैरह जो होते हैं, ये लोग जो मीडिया पे बात करते हैं उससे पहले एक प्रॉपर इनका एजेंडा सेट होता है, बैठते हैं, मतलब उस पे फिर मतलब सारे जर्नलिस्ट वगैरह आते हैं, बैठते हैं, और फिर वो एक एग्जीक्यूट किया जाता है चीज। तो उस बारे में क्या ख्याल है, इस तरह होता है या मतलब क्या सीन है इस तरह के, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था।
मतलब आप कह रहे चाह रहे हो कि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं और मीडिया कवरेज होती है ये प्री प्लान्ड होती है, ये नहीं होती, मतलब ये कहना चाह रहे हो।
हाँ, ये सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल
यार आई डोंट थिंक सो, अनलेस और अनटिल कोई प्लेयर किसी स्पेसिफिक एजेंडे पे चल रहा है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने रिसेंट पास्ट में अभी देखा है कि कुछ प्लेयर्स जर्नलिस्ट को अपने घरों पर बुलाते हैं, दावत देते हैं, और उसके बाद सडनली उनके हैशटैग्स चलना शुरू हो जाते हैं कि फलाने को टीम में आना चाहिए, फलाना डिजर्व करता है, फलाना नहीं करता। तो प्लेयर्स की हद तक तो आई थिंक ये पॉसिबल है, लेकिन आई डोंट थिंक कि पीसीबी इस लेवल तक जा सकती है, वरना तो फिर मीडिया वाले उनके पास तो उनको बहाना चाहिए पीसीबी को बदनाम करने का। तो प्लेयर्स एजेंडा आई थिंक चलता है, गिफ्ट
बिल्कुल
शिफ्ट्स चल रहे होते हैं और खाबे शाबे चल रहे होते हैं, आई थिंक इस लेवल तक तो कहानी चल रही है। उस्ताद मैं खुशखबरी की बात करता हूँ, न्यूजीलैंड का टूर अनाउंस हुआ है पाकिस्तान पे, ट्राई सीरीज तुम्हारी चल रही है, वर्ल्ड कप भी आने वाला है,
क्या
इंग्लैंड
बात,
आके चली गई है,
क्या बात,
न्यूजीलैंड भी आ रही है और दो बार आ रही
बिल्कुल,
है, क्या कहने हैं आपके इस पर?
क्या बात है भाई, क्या बात है जलाल साहब। बस आपने इतनी अच्छी बात कर दी है, मतलब के देखे ना, न्यूजीलैंड आ रही है, इतने अरसे बाद आ रही है, आई थिंक ये 19 ईयर्स बाद आ रही है पाकिस्तान,
हाँ
और बड़ा अच्छा स्टेप है। और मैं यही बोलूंगा, रमीज राजा को क्रेडिट जाता है इस चीज का, कि पाकिस्तान के होम में किस तरह की सीरीज लेके आना। और ये जो सीरीज है काफी लंबी है, पहले इन्होंने दिसंबर से जनवरी आना है, ये जो फर्स्ट लेग होगा, सेकेंड लेग आपका स्टार्ट होगा आई थिंक वो मई जून में, हाँ
अप्रैल में
मई
में
में स्टार्ट होगा, आईपीएल के साथ, आईपीएल के साथ क्लैश करेगा। तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा स्टेप है यार, मतलब अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, तो बड़ी एक अच्छी
नहीं,
खबर है
देखो
बिल्कुल।
आके आपने बोला ना 19 साल बाद ऑलमोस्ट आ रहे हैं, आए तो पहले भी थे लेकिन आके भाग गए, सही है, छू के चले गए। और उस पे अब क्रेडिट देना पड़ेगा रमीज राजा को, पीसीबी को, कि
बिल्कुल
भाई जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया अपना केस को, स्पेशली रमीज राजा तो आए थे, आई थिंक उनको कुछ दिन हुए थे तो
आए
ये
थे बिल्कुल,
कार्रवाई हो गई थी,
हाँ ये हो
तो
गया
बड़े एग्रेसिवली उन्होंने उसको केस को लड़ा। और ना सिर्फ केस को लड़ने का फायदा ये हुआ कि आपने उनसे पैसे भी लिए बतौर एक फाइन, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ मनी, उसके अलावा आपको अब ये ट्राई सीरीज भी मिल रही है, उसके बाद न्यूजीलैंड दो बार जिस तरह आपने बताया टूर करने भी आ रहा है, और उस केस लड़ने से ये भी हुआ कि इंग्लैंड भी अब ज्यादा मैचेस खेला, क्योंकि इनिशियली रमीज राजा बता रहे थे 5 T20s एग्री हुए थे, लेकिन पीसीबी ने लड़ के 7 T20Is कराए और फिर अब टेस्ट मैच भी दिसंबर में होंगे। तो उस्ताद अब आप दिसंबर में कवरेज करने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्तान में भी मैच है, रावलपिंडी में भी मैच है, कराची, लाहौर, हर जगह मैच हो रहा है, तो उस्ताद कोई कैमरा शैमरा पकड़े
यार
निकलें कवरेज करें।
सर लाजमी करना पड़ेगा, रावलपिंडी वाला तो, जो रावलपिंडी वाला वो तो इंशाल्लाह करूंगा लाजमी, बाकी लाहौर वाला अगर कोई आता है आगे, आई थिंक जो अप्रैल मई में आ रहा है वो लाहौर में हो रही है सीरीज, तो उसपे मैं जाऊंगा, तो उसपे हम लोग कवर करेंगे सारा इवेंट। बस आप ये दुआ करें कि हम जीत जाएं ताकि मजा भी आए।
यार अभी तो वर्ल्ड कप है आगे और ट्राई सीरीज है, पहले तो ये भुगतानी पड़ेगी, उसके बाद आगे आता है। लेकिन यार अच्छा है, अंडर 19 मैंने सुना है बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान का टूर कर रही है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया को भी होस्ट कर लिया पाकिस्तान, इंग्लैंड को भी होस्ट कर लिया, अब इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर रखे तो न्यूजीलैंड भी टूर कर लेगी, और अंडर 19 का भी आई थिंक ये
सही
पहला
है
टूर्नामेंट उस तरीके से होना है, तो ये तो बहुत
बिल्कुल
पॉजिटिव
बिल्कुल,
साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
हाँ जी बिल्कुल, अंडर 19 के जो टूर है ये तो जाहिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ा अच्छा है। खैर जलाल, आप मुझे ये बताएं कि हमने तो सीरीज की बात कर दी जो कि अभी आनी है, सही, आप मुझे ये बताएं कि जो कल मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, ठीक है, उसके बारे में क्या तासरात है आपके, क्योंकि पहला मैच तो पाकिस्तान अच्छा खेल गया, जीत गए, तो अब जो अगला मैच आ रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं आप?
नहीं अब तो उम्मीदें ज्यादा हैं यार पाकिस्तान से, खास तौर पे मेरा ख्वाहिश ये है कि शादाब वगैरह का जो डिसीजन लिया था उन पे स्टिक करें अब चौथे पे शादाब को, या चौथा नहीं तो सिचुएशन देख के ऊपर उसको शादाब को खिलाएं, नवाज को खिलाएं, थोड़ा और चांस दें, वही हम जो इतने अरसे से बात कर रहे थे, रिफ्रेशिंग चीज वही लगी लास्ट जो न्यूजीलैंड वाला मैच था। बांग्लादेश वाले मैच में तो फिर मेरा दिल को थोड़ा सा धचका पहुंचा, मैंने कहा भाई कोई सबक नहीं सीखा, लेकिन न्यूजीलैंड वाले मैच में क्लियरली नजर आया कि पाकिस्तान एक प्लानिंग के साथ गया है, और वही अगर प्लानिंग रखते हैं तो आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक कमेंट में पढ़ लूं वुडो पाक का, कहते हैं ये बात
जी
माननी
बिल्कुल
पड़ेगी, रमीज राजा के आने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा मैच जीते हैं मिसबा के कंपैरिजन में। ठीक है, अब मिसबा तो सर वो कोच और वो थे सेलेक्टर थे उस टाइम पे, रमीज राजा तो खैर चेयरमैन तो कोई और थे, लेकिन आप बात ठीक कर रहे हो, रमीज राजा के आने के बाद पॉजिटिव चीजें तो हो रही हैं, बस एक उनका वो जो एग्रेसिव नेचर है ना थोड़ी वो अगर वो थोड़ा चेंज कर लेना मीडिया के साथ जो वो बातें करते हैं, गुस्सा कर जाते हैं थोड़े,
यार
बाकी
उनकी
सब
एक
ठीक
और
है।
चीज भी अच्छी लगी जलाल, आप अभी देख रहे होंगे कि जो कि आपके जो जर्नलिस्ट वगैरह के साथ काफी ज्यादा आते हैं, रमीज राजा आ जाता है, मोहम्मद वसीम आ जाता है, इवन के सकलैन जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उस पर सवाल लेते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। इस तरह फैन फैन भी होता है, वो भी इंगेज रहता है और
हाँ
इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिलती रहती है, तो ये भी रमीज राजा के दौर में ज्यादा हुआ है, इससे पहले इतना ज्यादा नहीं था।
हाँ क्योंकि वो भी मीडिया के बंदे ही हैं ना यार, उनको पता है कि अगर आप अप टू डेट रखोगे सबको तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग आज की दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बड़े ब्रांड्स के लिए करना, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट। उनका यूट्यूब चैनल भी आप देखो तो कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं, और रमीज़ राजा तो खुद आपको
सही
पता है
बात है।
शिलिंग में तो वो मशहूर है,
हाँ
शिलिंग में
बाकी उस
मशहूर
पे
है।
भी यार लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आपको पता है जो वो पब्लिक फोरम नहीं हुआ था, एक पब्लिक जो
हाँ हाँ
डिस्कशन
फैंस
थी रमीज
फोरम।
राजा ने उस पे, हाँ फैंस फोरम, उसमें भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया यार जो आपके फॉर्मर क्रिकेट जो मतलब जो खेल चुके हैं क्रिकेट, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा यार कि एक अच्छा स्टेप है आप उसको सपोर्ट करें, क्या यार आप नेगेटिव
बस
बोल रहे
यार
हो।
फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना है। अच्छा बैक टू ट्राई सीरीज, न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का जो मैच है, मुझे बताओ कि क्या केन विलियमसन और कॉनवे की बैटिंग से आप सेटिस्फाइड हो? क्योंकि हम अपने बैटर्स को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी लैक ऑफ इंटेंट है, लैक ऑफ इंटेंट है। उधर उनके पास हिटर्स पड़े हुए हैं और अच्छे हिटर्स पड़े हैं जो आप भी उनका जिक्र करोगे, मुझे पता है यकीनन आपको कुछ उनके हिटर्स बड़े पसंद हैं। तो ये जो तर्ज
हाँ
उनकी
बिल्कुल
पहले 10 ओवरों वाली, ये तो हमारी तरह वाली तर्ज है, क्या क्या देखते हो इस पे?
यार बिल्कुल, इनका भी वही इशू है कि ये लोग शुरू में एक वो जो कि मतलब जो स्टाइल है आपकी बैटिंग का वो इनका नॉर्मल ही है, 7 to 8 इकोनॉमी पे जाते हैं, स्ट्राइक रेट पे जाते हैं, इंटेंट नहीं शो हो रहा गेम में, जो कि हम इंग्लैंड में देखते हैं, साउथ अफ्रीका का देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, जो कि पाकिस्तान का भी हम मतलब वही बात है कि पाकिस्तान जैसे इनका चल रहा है सिनेरियो कि टॉप ऑर्डर को ये लोग रिलाय करें ज्यादा, कि शुरू के ओवर ये लोग खड़े रहे, उसके बाद फिर स्ट्राइकर आए और वो आके मार दें, जैसे पिछले मैच में हमने चैपमैन को देखा, और जो कल का मैच होता है उस पर आई थिंक फिलिप्स ने मार दिया था काफी अच्छा 180 की स्ट्राइक रेट से, तो इनको ऊपर से थोड़ा विलियमसन को चाहिए कि थोड़ी सी स्ट्राइक रेट अपनी थोड़ी ज्यादा करें, और कॉन्फिडेंस दे नीचे वाले प्लेयर्स को भी कि अगर वो 15 14वें ओवर में आते हैं 13वें में आते हैं तो वो फिर वहीं से इंटेंट रखें, क्या कहते हैं आप इस पर?
बिल्कुल ऐसी बात है। मेरा ख्याल है इन्होंने जो यंग लड़का है ना एलन, उसके ऊपर जो ओपनर है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा आई थिंक अराउंड 170 के करीब है। तो उससे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फायरवर्क्स करेगा और उसके अराउंड कॉनवे और विलियमसन खेलेंगे, और फिर 12 15 ओवर्स के बाद मतलब ये लोग एंड में मारेंगे, चैपमैन आ गया या नीशम आ गया या फिलिप्स आ गया। ठीक है, अब वो हो नहीं रहा क्योंकि
बिल्कुल
एलन अभी तक चला नहीं है। मेरा ख्याल है अगर एलन किसी मैच में परफॉर्म कर जाता है तो वो फिट हो जाएगा। अच्छा अब सरप्राइजिंग बात ये है कि एलन खेल रहा है, इवन दो बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, उसकी जगह गप्टिल की जगह। सही है, मुझे तो गप्टिल बहुत पसंद है, खास तौर पे जो उनका बैलेंस है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी अच्छा ही खेलते हैं, अक्सर फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो शायद इनको
बिल्कुल
ऊपर से कुछ एक आध बैट्समैन का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है कॉनवे और विलियमसन, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं बाबर रिजवान एक साथ खेलते हैं तो थोड़ा स्लो खेलते हैं, उनको भी थोड़ा सा हिसाब देखना पड़ेगा। कमेंट लेते हैं एक जी उमैर साहब।
यार इसमें बिल्कुल यार ये फिनल अच्छा कमेंट आ रहे करे, क्या कह रहे हैं वुडू भाई, हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है मैं कोई खराब नहीं है, बस उनकी टेक्निक पर काम नहीं हो रहा, फेल हो रहे हैं। यार बात आपकी सही है, हम लोग भी यही बात करते आए थे, एक बल्कि हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स का इतना मसला नहीं है, लाइनअप का मसला है, तो वो हम लोगों ने लास्ट मैच पे देखा कि लाइनअप इंप्रूव हुई तो रिजल्ट आपके सामने, मतलब कि शादाब ऊपर आया तो काफी एक इम्पेक्ट नजर आया चीज का, हमारी बैटिंग लाइन में और स्ट्रेंथ आ गई और मतलब कि बड़ा अच्छा एक हो गया सीन।
लेकिन वोडू भाई आपने कमेंट थोड़ा सा अजीब सा लिखा है। कमेंट आपने लिखा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में कोई खराब नहीं है, बस उनकी टेक्निक पे काम नहीं हो रहा। तो अगर उनकी टेक्निक खराब है तो फिर प्लेयर भी कैसे ठीक हो सकता है? मेरा ख्याल है टेक्निक जो उमैर कहना चाह रहा है वो ये है कि राइट बैटर राइट मैच सिचुएशन पर हम नहीं भेजते। जिस तरह हम शादाब को ऊपर भेजा, उसने एग्रेसिव खेला क्योंकि उसकी गेम ही एग्रेसिव है, और हम मिडिल ऑर्डर में वो 7 से 15 ओवर वाले फेज हम मिस कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें कोई तेज़ खेलने वाला नहीं मिलता, वो हमें शादाब में नज़र आता है। अगर आप इफ्तिखार की बात करो टेक्निक पे, तो वो तो टेस्ट मैच में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास लेवल पर उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। खुशदिल की हिटिंग कैपेबिलिटी पे डाउट हो सकती है, हिट मारते हुए आउट हो जाता है, लिस्ट ए कैरियर में उसकी 40 से ऊपर की एवरेज है। तो उस तरीके से बैट्समैन तो मेरा ख्याल है ठीक ही है, लेकिन शायद जब एग्रेसिव खेलना पड़ता है तो मसला हो जाता है। क्या कहते हैं आप सर?
यार वही बात है, सही कह रहे हैं। यही वाला आर्गुमेंट हम लोग लास्ट एपिसोड्स पे भी डिस्कस कर रहे थे। इवन के मुझे याद है जलाल, हम लोग जब वर्ल्ड कप की टीम, वर्ल्ड कप की थी आई थिंक, कोई सीरीज हो रही थी पाकिस्तान की, उसकी हम लोग उसकी हम लाइनअप बना रहे थे, तो आपने आपने वो वाले टाइम पे भी शायद आपको सेकंड डाउन रखा था
हाँ, मैंने ये
अगर
एशिया
याद
कप
हो,
वाले में रखा
जिसपे
था।
आप बोल रहे थे, जिसपे बोल रहे थे थोड़े क्रिएटिव हो रहे हैं ये वो,
हाँ,
तो
ये जब
देखे।
एशिया कप की हम प्लेइंग 11 बना रहे थे तो उसमें मैंने शादाब को
हाँ
चौथे पे रखा था कि यार उधर चांस देना चाहिए, बट आई डोंट नो कि क्या चल रहा है। इवन दो शादाब वाइस कप्तान है यार, कभी कभी लगता है उसकी सुनी नहीं जाती।
यार बल्कि मैं आपको बताऊं, मुझे तो मतलब ये भी लोग काफी बातें कर रहे हैं कि शादाब को कैप्टन बना देना चाहिए, बाबर की कैप्टनसी से लोग इतने खुश नहीं है, इस तरह की बातें भी हो रही है।
यार अब
वैसे शादाब तो ठीक है यार, मतलब शादाब का तो मेरा भी वोट
बाबर का
बाबर
इम्तिहान
के
इस वर्ल्ड
बिना,
कप में है
क्या कह रहे
भाई।
हैं।
बाबर ऑब्वियसली देखो परफॉर्मेंस, अगर मैचेस देखो तो पाकिस्तान अगर विन रेशियो निकाल के देखो तो बुरा नहीं, आप उस तरीके से निकाल नहीं सकते। क्योंकि ये बात सरफराज पे भी हुई थी कि सरफराज तो पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल T20I कैप्टन था, अगर आप विन लॉस रेशियो देखो तो वो तो सबसे ऊपर है। तो उस टाइम के ऊपर लोगों ने बोला था कि यार आप वनडे से निकाल दो, टेस्ट से निकाल दो, लेकिन आप T20 से कैसे निकाल सकते हो ऐसे कप्तान को जो इतना सक्सेसफुल है। तो अब कहीं ना कहीं वो बात फिर बाबर पे भी होगी। अभी मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप तक तो बाबर को बैक करना चाहिए, और आई होप अगर ये
हाँ वो तो बिल्कुल,
स्टिक करता है ना इसी जो पैटर्न न्यूजीलैंड के साथ था ना उमेश जी, वो बड़ा जबरदस्त था। उसमें बॉलिंग में भी बाबर ने
हाँ
बड़ी अच्छी चेंजेस की और बैटिंग में बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा खिलाया। तो आई थिंक अगर इस तरह करेगा
यार
तो सही हो
बॉलिंग
जाएगा।
में, हाँ नहीं, बिल्कुल उसको बैक करेंगे हम। बड़ा एक है वो भी, इम्प्रूवमेंट भी थोड़ी नजर आई है, लेकिन जलाल बॉलिंग में मैं कहता हूँ एक फोर्थ सीमर होना जरूरी है।
हाँ,
क्या कहते हैं, कल के मैच में देख रहे हैं आप, कल के मैच में कोई ऐसी ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं कि आपका नसीम आ जाए और साथ मतलब कि वसीम एज अ फोर्थ बॉलर खेले और नसीम आपका मेन अटैक में आए,
ये
वसीम
कल
या
जब
चहल वसीम।
मैं अकेला कर रहा था तब मैंने भी ये बात की थी कि फोर्थ सीमर हमारे पास होना चाहिए और वसीम को एज अ फोर्थ सीमर शायद खेलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस सीरीज में शायद पाकिस्तान वो ट्राई आउट करेगा, क्योंकि अभी हमें बैटर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है। तो अब देखना ये है कि नसीम और हसनैन कितने फिट हैं। वो बॉलिंग तो उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन आई डोंट नो कि वो मैच फिट हैं अभी के नहीं है। अगर उनमें से कोई खेलता है तो फिर कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। लेकिन आप देखो ना कि अभी हैदर को नीचे खिलाया है तो उसके पास सिर्फ 2 गेंदे उसने खेलनी है। नवाज को भी अभी इतना उस तरीके से चांस नहीं मिला, शादाब को भी नहीं मिला। तो बैटिंग ऑर्डर में अभी इफ्तिखार और आसिफ पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है बाबर चाहेगा कि अभी बैटर ज़्यादा खिलाए, बॉलर कम से भी
बिल्कुल,
गुजारा हो जाए, लेकिन वर्ल्ड कप में मैं आपसे एग्री करता हूं कि 4 सीमर के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए।
बाकी जलाल एक और क्वेश्चन है आपसे, जी, एक और क्वेश्चन है आपसे कि वर्ल्ड कप पे अभी मैं खबर पढ़ा था कि शाह के जो फखर जमान है वो बंदा मतलब ठीक हो रहा है, उसकी जो फिटनेस इश्यू थे ना बेहतर हो रहे हैं, तो वो आप उसको देख रहे हैं शान मसूद की जगह वर्ल्ड कप, या क्या सीन है।
यार अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि शान मसूद की जगह मैं देख रहा हूँ, आई थिंक मैं उसको खुशदिल की जगह देख रहा हूँ
सही
स्क्वाड में। तो मुझे तो यही लग
है,
रहा है, खुशदिल शायद रिजर्व में
और
चला जाए और फखर शायद मेन स्क्वाड में आ जाए।
हाँ
ये इतनी चेंजेस मैं देख रहा हूँ अगर तो फखर फिट हो जाते हैं। बाकी उस्मान कादिर के ऊपर डाउट्स हैं क्योंकि उनकी फ्रैक्चर हुआ हुआ है, 16 अक्टूबर तक वो बाहर हैं। उनकी जगह कौन आता है अगर तो कोई आता है? डैरल मिचेल, जिस तरह ये न्यूजीलैंड में भी बड़े मसले हैं, डैरल मिचेल का भी फ्रैक्चर हुआ हुआ
हाँ
है लेकिन
बिल्कुल,
वो उसको लेके जा रहे हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उसको वो वर्ल्ड कप
अच्छा
ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि पहले 2 मैच बेशक ना खेले या 1 मैच ना खेले, हाँ इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि हम उसको लेके जा रहे हैं। अब क्या उस्मान कादिर इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाओगे?
हाँ
तो वो देखने वाली बात है।
हाँ नहीं बिल्कुल, डेरिल मिचेल की बड़ी सही बात की यार, वो बल्कि वो तो बड़ी फॉर्म में था अभी पिछली सीरीज में
इंग्लैंड वाली सीरीज
जो
में कितना
खेला वो
मारा
तो,
उसने है?
हाँ बहुत मारा है, हाँ बिल्कुल, बड़ा फिट प्लेयर है वो भी, तो वही बात है कि स्ट्रगल है उनके लिए।
अच्छा कल
बाकी
मैं ये भी
दोनों अभी
बात कर रहा
हमारा
था कि
एक जरा
न्यूजीलैंड की
शेलिंग मार
ना
ले अपने,
क्या कह रहे हो?
मैं कह रहा था एक जरा मैं कह रहा था एक जरा शेलिंग मार ले अपने चैनल की, के अगर के अभी जो जो हमें देख रहा है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाए और सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, और कुछ रह तो नहीं गया जलाल?
यार इस टाइम के ऊपर हम स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ट्विच के ऊपर, ठीक है? तो जो बंदा जिस प्लेटफॉर्म को भी प्रेफर करता है वो वहां पे जाके देख सकता है। मकसद ये मल्टी स्ट्रीमिंग करने का ये है कि अक्सर लोग, मैंने नोट किया है, ट्विटर के ऊपर ही पसंद करते हैं कि कंटेंट, क्योंकि ट्विटर पे ब्राउज कर रहे हैं तो वो कहते हैं ट्विटर पे ही रहे हैं, हम यूट्यूब पे क्यों जाएं, फेसबुक वाले फेसबुक को प्रेफर करते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो बंदा जहाँ पे बैठा है उसके लिए आसानी हो जाए और वो सुन सके और हमारे साथ पार्टिसिपेट भी कर सके जिस भी प्लेटफॉर्म से वो करना चाहता है। तो ये एक बात है। बाकी आपने मुझे बात भुला दी, मैं पता नहीं क्या करने लगा था, कुछ तो बात करने लगा था
क्योंकि मैं
मैं
आपको बताता हूँ बात, आप कुछ कर रहे होंगे।
हाँ नहीं,
इंग्लैंड
मैं
वाले की
बात
तो
मुझे
बात
याद
कर
आ
रहे थे
गई,
आप, ऑस्ट्रेलिया वाले।
न्यूजीलैंड के जो पेसर है ना वो भी इंजर्ड है सर। आपके जो लॉकी फर्गसन है उनको एब्डोमिनल इंजरी हुई, फिर ये जो बांग्लादेश वाला मैच हुआ इसमें एडम मिलन वो भी 2 ओवर कराया उसने, वो साल बाद बेचारा वापस आया और अब फिर 2 ओवर करा के वो बाहर हो गया। तो मेन जो दो उनके 90 माइल्स ऊपर बॉल करने वाले बॉलर्स हैं वो ऑलमोस्ट इंजरी के दहाने पे खड़े हुए हैं, तो उनके लिए बॉलिंग कॉम्बिनेशन में भी मसला
यार
लग रहा है, बैटिंग में भी लग रहा है। तो न्यूजीलैंड टॉप 4 वाली टीम अभी लग नहीं रही वर्ल्ड कप से पहले इस दफा।
यार, ये जो आपने खबर सुनाई है अभी, तो ये तो काफी अलार्मिंग है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है, जो फास्ट बॉलर्स हैं। तो जैसे ट्रेंट बोल्ट होगा सऊदी चले, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी भी चाहिए, तो वो अगर नहीं होंगे तो जाहिर है बहुत बड़ा सेटबैक है, और इनका जो ग्रुप है वो भी टफ है। तो वही बात है, बुरे हालात हो जाएंगे थोड़े, लेकिन यार कुछ कह नहीं सकता ना, ये ऐसी टीम है ना जलाल, इस तरह के इवेंट्स में छा जाती है आके, वर्ल्ड कप हो गया,
छा तो जाती
चैंपियनशिप हो
है।
गई, इस तरह के इवेंट्स है ना, ये
वुडू
बुरा
पाक
एक।
कहते हैं कि इंग्लैंड ने सिग्नल दे दिया है कि जी वर्ल्ड कप हमारा है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ये पहला मैच जो हुआ था यार वुडू पाक भाई, उसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई मेन बॉलर नहीं खेल रहा था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ना कोई वो था मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग, हेजलवुड और आई थिंक जेम्पा भी नहीं था। तो हराया तो है नो डाउट। अच्छा इस मैच में भी उमेर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, क्योंकि आई थिंक आप तो वो वलीमा शलीमा खा रहे थे तो आप शायद वो मैच देख नहीं सके, लेकिन इसमें एक हुआ कि फिनिश कर रहे थे आपके मैथ्यू वेड ने शायद शॉट मारी, टॉप एज हुआ या क्या हुआ, अब वो मार्क वुड बॉलिंग करा रहे थे तो मार्क वुड कैच लेने के लिए आ रहे थे, ठीक है, और मैथ्यू वेड ने ना उनको हाथ से पुश करके कैच नहीं लेने दिया। तो वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई है कि उस पर क्यों नहीं
यार
अपील
ये तो
की।
बड़ा गलत किया,
हाँ बड़ी
ये तो
कंट्रोवर्सी उस
बड़ा
पर
गलत
फैली
ही
हुई
हुआ।
है।
तो ये वाली चीज पे कोई कोई आई है बात, ऑफिशियल ऑफिशियल किसी ने कुछ बोला, आईसीसी वगैरह ने, कि यार इस
यार नहीं
तरह नहीं
अभी तक
होना
आईसीसी
चाहिए?
से तो नहीं, लेकिन बटलर्स क्योंकि कप्तानी कर रहे थे, बटलर वापस आए मैच में, तो बटलर से पूछा, उसने कहा यार मैं देख नहीं रहा था, मेरे नज़र बॉल की तरफ थी तो मुझे चाहिए था, मैं बाकी फील्डर से पूछता और अगर मुझे कोई कहता कि हाँ भाई ये ऑब्स्ट्रक्शन है या इन्होंने जान के रोका है तो फिर मैं अपील करता। हालांकि अगर वो अपील करते तो क्लियरली वो आउट थे। तो उस पर बहस ये हो रही थी कि आपको याद होगा आई थिंक दीप्ति शर्मा ने वो जो मैनकैट वाला सीन कर दिया था इंग्लैंड
हाँ
की एक
बिल्कुल
विमेन
बिल्कुल बिल्कुल,
क्रिकेटर को ना,
हाँ
तो
हाँ
उस पे बड़ा कोई
बिल्कुल
इंग्लिश
बिल्कुल,
मीडिया एकदम से आग बगोला हो गया था कि भाई ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, सब कुछ है ये वो, और हर कोई ट्वीटे कर रहा है। तो कल मैं ट्रेंड देख रहा था कि इतनी कोई डिबेट उस पे कर नहीं रहे थे लोग कि ये तो उससे बड़ा एक इवेंट है, ये तो आप कैच पकड़ने से
हाँ
बंदे
ये
को
तो
रोक रहे हो, वो तो फिर
बिल्कुल,
लॉस के अंदर था ना।
हाँ
इस पे आकाश चोपड़ा
हाँ
की भी मैं ट्वीट देख रहा था कि अब इंग्लैंड के जो वो प्लेयर्स को भी बोल रहे थे और नेशन को भी बोल रहे थे कि आप स्पिरिट ऑफ गेम के कस्टोडियन हैं तो अब आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो नजर आ रहे हैं।
हाँ नहीं यार, ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि बॉल अगर वो कैच पकड़ रहा था और वेट ने ऐसा किया, तो ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब यही बात है उसके, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला सीन नहीं है फिर क्रिकेट में
हाँ
इतना भी, तो इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया से हम कब ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का वो कोई
यार
जेस्चर देखने में
एक दफा
मिल,
जलाल, एक दफा एक इवेंट मुझे याद है खाली,
एडम गिलक्रिस्ट
और
वाला,
वो आपको एडम गिलक्रिस्ट वाला, यार
वो तो बंदा ही अलग
बहुत
है
ही
यार, वो बंदा ही अलग है।
लेजेंड बंदा था, मतलब कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं, देखो सेमीफाइनल में आप फॉर्म में हो और आपका आउट नहीं दिया अंपायर ने, आप जा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है यार। इस तरह फखर जमान ने भी एक किया था, आपको याद
इंडिया वाले मैच में किया था ना,
होगा। हाँ इंडिया वाले मैच में किया था।
देख लो यार इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में बंदा चला जाए हैं, बड़ी बात है,
हाँ
बड़ी बात।
बिल्कुल ऐसा ही है।
सर जी
तो
प्रिडिक्शन
ये
दें,
सीन है कल
प्रिडिक्शन दें, कल कौन जीत रहा
के
है?
मैच की। यार कल पाकिस्तान ही, पाकिस्तान की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पाकिस्तान ये वही शादाब ऊपर आता है और नवाज ऊपर आते हैं, तो ये लोग परफॉर्म करेंगे उम्मीद है। तो मैं तो मेरा वोट तो पाकिस्तान के साथ है। बस एक चीज मैं चाहूंगा कि चार सीमर खेले, ठीक है, आपका जो मतलब कि जो मोहम्मद वसीम वो एज अ फोर्थ बॉलर आ जाए, और नसीम या हसनैन में से एक बंदा फील्ड में होना चाहिए लाजमी,
अच्छा,
क्योंकि अभी
अब यह
दिन कम
आपने
है, ठीक
बोल तो
है।
दिया कि फोर्थ सीमर होना चाहिए। अब देखो मुश्किल सवाल यह है कि अब हम भी बोल, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन बोलना आसान है। अब आप बिठाओगे किसको
हाँ
टीम में से फोर्थ सीमर
यार
खिलाने के लिए, ये मसला है ना।
वही, ये बिल्कुल, ये हमने शायद बात की थी परसों ना, जिसपे हम कह रहे थे
हाँ
कि यार देखो इफ्तिखार की तो बचत हो गई, वो तो एज
बॉलिंग कर
ऑलराउंडर
लेता
आ
है।
गया, ठीक है, पीछे बेचारे जो बॉलिंग कर लेता है, पीछे जो ऑप्शन बचती है वो आपकी बचती हैदर अली की या आसिफ की। और लेकिन वही बात है आप वाली कि ये डिसीजन बड़ा टफ है, हैदर अली ने दो बॉलर खेल के छक्का चौका मार दिए हैं, तो उसको निकालना उस तरह बनता नहीं है, तो ये थोड़ा टफ है वैसे। हाँ मतलब अगर मेरे ख्याल में अगर निकालेंगे तो ये यार, लेकिन शान मसूद की भी तो ऑप्शन, लेकिन शान मसूद को निकाल नहीं सकते ना, उसकी पोजीशन है।
देखो टफ है
यार
ये
ये टफ है,
तो,
ये टफ है,
अगर
टफ है,
नहीं
टफ
भी
है, टफ
खिलाते तो आप
है,
इस पे
सही
ये नहीं
कह
कह
रहे
सकते कि गलत किया, ठीक है। अगर खिला
हो।
लेते
हाँ
हैं तो आप ये बोलोगे
ये
बड़ा
टफ है।
ब्रेव
हाँ
डिसीजन लिया। तो ये दोनों दोनों तरीके का आ रहे हैं देखने के लिए ना, उस नजर से कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से जाता है। आइडियली तो यार आप सिर्फ इमेजिन करो, वर्ल्ड कप में शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ आपके तीन आउट एंड आउट पेसर हैं, मोहम्मद वसीम आपका चौथा पेसर बनता है, तो चार ये आपके पास ऑप्शन हो गए पेस के, अलॉन्ग विद शादाब और नवाज आपके पास हो गए स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, और
स्पिनिंग
इफ्तिखार पार्ट
ऑलराउंडर्स
टाइम स्पिनर।
पार्ट टाइम,
तो सात आपके
बहुत
पास
क्लास है।
बॉलिंग ऑप्शन है। मेरा ख्याल है इससे ऊपर की बॉलिंग अटैक दुनिया में फिर कोई नहीं है, क्या कहते हो?
कोई भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और यार जलाल इतना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को इस टाइम, देखिए ना हम जो बात करें तीन स्पिनर्स की, वो प्रॉपर मतलब वो मतलब कि वो अच्छे बैट्समैन भी है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एज है मतलब पाकिस्तान का, कोई एक एक्स्ट्रा स्पिनर उस तरह नहीं खिलाना जिस तरह इंडिया खिलाता है, ठीक है, बिश्नोई को, चाहल को, इनके
बिल्कुल
पास तो प्रॉपर बैट्समैन वाली एक और ऑप्शन बचती है, तो अगर तब भी अगर हम ना जीते तो फिर अब क्या कह सकते हैं।
यार, बस बैटिंग में है उमेर साहब, बॉलिंग तो कवर्ड है। बैटिंग में अगर हम अपना राइट कॉम्बिनेशन जिस तरह वही शादाब वगैरह पे कॉन्फिडेंस रखें ना ऊपर, आई थिंक देखो शादाब नवाज के आने से बैटिंग हमारी लंबी कितनी ज्यादा हो गई थी, कि अभी इफ्तिखार और आसिफ पड़े हुए थे आपके
हाँ
पास और मोहम्मद वसीम भी पड़ा हुआ था आपके पास,
बिल्कुल,
ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर इसी कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो पाकिस्तान अपने मसले सॉल्व कर सकता है मिडिल ऑर्डर की, कोई इतना खास कोई बड़ा आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आती। वही बात है अगर बाबर स्टबर्न ना हो।
बिल्कुल नहीं, वो बाबर बाबर के वो पोस्ट मैच सुन रहा था मैं, तो उसमें कहते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा हुआ कि शादाब और नवाज ऊपर आए, नहीं तो इनको चांस ही नहीं मिलता था खेलने का, ये उन्होंने
हाँ
इस तरह सरकास्टिक वे में नहीं कहते बंदा इस तरह करके का, तो मेरे ख्याल में कि बाबर इनको रखेगा, इनको वो कॉन्फिडेंस देगा, टॉप पे आएंगे ये लोग, सेकंड डाउन सॉरी थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन
अच्छा, अब इस पे भी
रैंक।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं मोहम्मद हफीज की ट्वीट देख रहा था, मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं कि
हाँ
जी ये टेम्पररी सोल्यूशन तो हो सकती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकती, कि आप इरेगुलर बैट्समैन को या लाइक शदाब और नवाज पे वो इशारा कर रहे थे, उनको आप ऊपर भेज के टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, और टूर्नामेंट नहीं शायद आप जीत
यार
सकते
जी
इस तरीके से। क्या उस पर
जी
आप कहते हो?
अच्छा हाँ मैं उस पे बोलूंगा। अच्छा वो जो ये बात करें, वो ये बात करें ये वाले फॉर्मेट की या वो 50 ओवर्स की
टी
बात
ट्वेंटी
करें,
की बात कर।
या नहीं यार इस पे तो ठीक है, ये तो गुड टू गो है, मतलब कि इसमें ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती कि आप प्रॉपर, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर बैट्समैन होगा ना वो फिर थोड़ा टाइम भी लेगा, जैसे शान मसूद है, अच्छा
हाँ
बैट्समैन एक टाइम लेता है, तो मेरे ख्याल में जब T20 फॉर्मेट आ जाता है तो वहां पे वो वाली चीज इतनी मैटर नहीं करती। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए, शादाब के पास टेक्निक तो है, उसपे तो कोई डाउट, उसपे तो कोई उस तरह शक नहीं है। और उसके अलावा अगर एक और चीज देखें कि बाबर और रिजवान ऊपर से वैसे स्लो खेल के आ रहे होते हैं थोड़ा इकोनॉमी, तो वैसे भी हमें फिर यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती एज अ प्रॉपर टेक्निक वाले बैट्समैन, उस
बिल्कुल
तरह की
देखो,
चीजों को
और
फेस
या तो शादाब ने ऊपर बैटिंग ना की हो ना, पूरे पीएसएल में तो वो ऊपर बैटिंग करता है, इवन वो तो वन डाउन भी आके बैटिंग
करता
करता है और उधर उसने परफॉर्मेंस भी दी है। नवाज कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए 5-6 नंबर पर, 4थे नंबर पर बैटिंग करता है, तो वो तो जबरदस्त ही है। अच्छा, उसमें एक
है।
इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। एक कमेंट आया है, एक मिनट देखते हैं। SS98 साहब, आई थिंक इंडिया की शिलिंग मार रहे हैं, लेट्स सी कि कैसी शिलिंग मारते हैं वो। कहते हैं कि जी इंडिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। बिल्कुल, इंडिया ने 158 for 6 किए थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 145 for 7 कर सका। इंडिया जीत गया 13 रन से। स्काई ने फिर 50 की 35 गेंदों पर। अर्शदीप की 3 विकेटें, भुवी की 2 विकेटें, चाहल की 2 विकेटें, हर्षल पटेल एक्सपेंसिव विद द बॉल। गुड यार, आपने बड़ी जबरदस्त समरी दी है, इतने छोटे कमेंट के अंदर आपने
अरे
पूरा मैच बता दिया। मैं ये मैच
यार,
टेलीकास्ट तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स यारी वगैरह वाले वो उनको कवरेज कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक सुशांत मेहता उधर गए हुए हैं, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, तो वो फोन
ऑस्ट्रेलिया।
से बता रहे थे, तो मैं देख रहा था, सुन रहा था। तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल किया है टॉप ऑर्डर, आई थिंक जल्दी 3 विकेटें पहले गिर गई थी इनकी। विराट कोहली वगैरह तो नहीं खेले आई थिंक, लेकिन दीपक हुडा वगैरह, रोहित शर्मा खेले, वो जल्दी आउट हो गए। आई थिंक ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और कौन थे साथ उनके, पांड्या, हाँ उनकी पार्टनरशिप लगी थी, वो थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। अच्छा जी,
अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ इनका जो मैच का ना स्कोर कार्ड, उसपे पंत, वही बात है कि पंत फेस किया है इन्होंने और उसपे नहीं खेल सके। 9 रन मारे 16 बॉलों पे,
नौ
ये
रन
देखिए जरा,
सोलह
9 रन
बॉलों
मारे
पे
16 बॉलों पे मारे,
ओए होए
56
होए।
की स्ट्राइक रेट से। यार पिच की क्या सिचुएशन थी ये SS98, जरा बताए ना, क्योंकि मुझे लग रहा है पिच भी शायद थोड़ी सी काफी ज्यादा होगी आपके बॉलर के फेवर पे, क्योंकि
अच्छा, अब ये देखो, रोहित शर्मा को किसने आउट किया है, बैरनडोफ ने आउट किया है।
हाँ
ये
बैरनडोफ ने
वही
आउट किया
यार
बिल्कुल।
खब्बा, देख लो देख लो, शाहीन आफरीदी वाइब्स आ रही है, मैं अभी इमेजिन कर रहा हूं, देख लो इन स्विंगिंग डिलीवरी आ रही
बिल्कुल
है, आ रही है, आ रही है, आ रही है,
ऐसे ही है,
क्या ख्याल है?
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जानी, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखे फिर उसके बाद, अच्छा ये हुडा आया वन डाउन, स्काई सेकंड। यार स्काई यार क्या प्लेयर है यार वैसे स्काई पे।
हाँ ये
बल्कि हमने
बात
एक
तो
और
है।
बात भी करनी थी जलाल, बल्कि आप ही बता रहे थे, आपसे बल्कि हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑफ द स्क्रीन जब हम, कि यार देखो रिजवान की नॉमिनेशन में कैमरॉन ग्रीन आ गया, ठीक है, और उसके साथ एक और कौन सा बंदा था
अक्षर पटेल
नॉमिनेशन
था
में,
आई थिंक, ये
अक्षर पटेल था
आईसीसी
बिल्कुल।
प्लेयर ऑफ द मंथ की बात
हाँ
हो रही है।
बिल्कुल, लेकिन स्काई इस पे नहीं आया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में, तो
जीत
वो
सकता था
थोड़ा है
यार, जीत सकता था
ना,
सितंबर
जीत
वाला।
सकता था, मतलब जीत सकता था, बिल्कुल जीत सकता था, तो ये थोड़ा सा सीन ऑफ हुआ है।
वुडू पाक कमेंट कर रहे हैं, वुडू पाक कहते हैं भाई हम लोग शान को लेकर आए, बैटिंग स्ट्रांग होगी, पर वो तो परफॉर्म नहीं कर रहा। यार बात तो आपकी जेन्युइन है, लेकिन अब इसमें एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा कि खुशदिल को जहां आपने इतने चांस दिए हैं, आप शान को आप 6 मैच 7 मैच दे के तो नहीं निकाल सकते। 2.50 तो उसने किए हैं, 1.50 अच्छी थी, 1.50 सस्ती थी, तो थोड़ा मुझे लगता है टाइम देना पड़ेगा उनको यार, इस तरीके से आप बायर नहीं कर सकते, वरना
यार
नाइंसाफी हो
बिल्कुल ऐसे
जाएगी।
टाइम टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में प्रेशर लिया हुआ है इन्होंने, मुझे अभी तक वो कॉन्फिडेंट इनका नहीं नजर आया जो ये काउंटी पे जो नजर आता है इनका खेलते हुए, तो होप सो अल्लाह करे आ जाए। बाकी मोहम्मद यूसुफ को तो काफी कॉन्फिडेंस है इन पे, मतलब कि ये वन डाउन ही रहेंगे उम्मीद है, तो
अच्छा,
बिल्कुल
SS98
देख के
साहब
क्या
आपको
होगा।
पिच की अपडेट दे रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि जी पिच वाज बॉलिंग फ्रेंडली, न्यू बॉल वाज अनप्लेएबल। क्या बात है,
अनप्लेएबल, बस वो स्टैट्स देख के ही लग रहा है कि कुछ ऐसी सूरत हाल थे। तो
अर्शदीप ने ऊपर से आउट किए हैं, उसकी बॉल स्विंग हो रही है यार।
अर्शदीप ने उस्ताद उस्ताद अर्शदीप ने 3 ओवरों में 6 रन और 3 विकेटें,
ओ खैर हो जाए
क्या
वे।
बात है क्या बात
अच्छा,
है, ये
मुझे
तो सोहेब
वैसे
तनवीर वाला स्पेल।
अर्शदीप पे
हाँ बोलो।
डाउट था, मतलब डेथ बॉलिंग पे तो डाउट नहीं था, लेकिन मुझे अर्शदीप की, मैंने आपको पहले भी शायद जिक्र किया था, पावर प्ले में मुझे थोड़ा अर्शदीप पे लगता है डाउट, लेकिन अगर वो बॉल स्विंग हो रही हो तो फिर वो काफी लीथल हो जाता है।
ये
फिर तो
है,
भुवी भी बड़े
नहीं
लीथल हो
नहीं
जाते हैं, बॉल स्विंग हो तो फिर भुवी तो खतरनाक बॉलर है।
बिल्कुल। अच्छा वो दीपक चाहर की खबर कोई मैं सुन रहा था, इंजरी हुई हुई है, वो क्या स्टोरी है?
आई थिंक वो बायर हो गए थे ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से, तो उनकी जगह कोई और, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को शायद एज अ स्क्वाड में ऐड किया था। वो अच्छे ऑलराउंड ऑफ स्पिनर है, बैटिंग भी खबी करते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, और अनलक्की रहे हैं अपने कैरियर में, इंजर्ड बड़े गलत टाइम पे हो गए, वरना शायद आखिरी पिछला वर्ल्ड कप भी खेलते और ये वाला वर्ल्ड कप भी खेलते। वो बेसिकली ना वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा अगर साथ खेलते हैं ना इंडिया को, तो बहुत ज्यादा बैलेंस मिल जाता, जिस तरह हमें शादाब और नवाज का बैलेंस मिल रहा है ना, तो वो उनको भी एक बैटिंग मिल जाता। अश्विन की जगह पे वो आ सकते थे स्क्वाड में।
बिल्कुल। बाकी जलाल साहब, इसकी तो बात कर दी हमने इंडिया की और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले ओडीआई सीरीज जो चल रही है, उस पर क्या तासुरात है, क्या सिचुएशन है
यार
सेकेंड
मैंने तो
ओडीआई
कल उस
जो
पे
हुआ?
नजर डाली थी, वन वन पे ही है ना अभी। श्रेयस अय्यर ने 100 मारी पिछले मैच में, ईशान किशन ने 100 कर सकते थे वो भी, 93 आई थिंक उन्होंने बनाए। तो इंडिया ने तो खैर आउटलास्ट कर दिया, उधर भी बॉलिंग भी अच्छी रही इंडिया की कुछ जगहों पर। तो अब चांस है ये, अगर उस लिहाज से देखा जाए ना सुपर लीग के पॉइंट्स के हिसाब से, तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि
हाँ,
ऑस्ट्रेलिया वाली
क्योंकि
सीरीज
इन्होंने
आई थिंक
वहां
वो खेल
जहाँ
नहीं रहे।
ऑस्ट्रेलिया मिस करा, बिल्कुल वो नहीं मिस है इनकी। अच्छा, इनका मैं देख रहा हूँ हेंड्रिक्स आ गया वापस, वो अमा नहीं है वो इनका कैप्टन रहता है, बोमा
हाँ वो हेंड्रिक्स ने स्कोर भी किया
सेकंड
आई
वाले।
थिंक।
हाँ बिल्कुल, हेंड्रिक ने 74 किया है 76 बॉल्स में, तो ये सीन है
कौन जीत रहा है भाई ये सीरीज?
यार। अभी जो स्कोर कार्ड देखे, मुझे तो इंडिया ही लग रहा है क्लीन शीट, मतलब मुझे तो नहीं और कोई इस पे डाउट लग रहा जिस तरह खेल रहा है।
वुडू पार्क
आप क्या
भाई
कहते
कह
हैं?
रहे हैं कि विमेन क्रिकेट की भी अपडेट दे दिया करें यार, अकेली हम जाने हैं दो, कितने किधर किधर हम देखें मैच को हैं, बाकी जिंदगी में भी काम करने हैं। अब जो मैच हमने नहीं
बिल्कुल
देखा होता
सही
उसके
बात।
ऊपर हम उस तरह बात नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो
हाँ
बनती नहीं है बात। अभी जैसा इंडिया वाला
बिल्कुल।
मैच मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में चंक्स में देखा हुआ है, तो मैं उस पर कर सकता हूँ। अब जिसने जो मैच ही नहीं देखा उस पर बंदा अब क्या अपना बात करे। स्कोर कार्ड देख, स्कोर कार्ड तो
बिल्कुल।
आप लोग भी देख ही सकते हो, वो भी मजा नहीं आता ना उस तरह
बाकी
डिस्कशन करने।
वो, हाँ बाकी वुडू भाई, हमने एक अपनी पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया हुआ है बेसिकली, उस पे हमने सेगमेंट्स पे डिवाइड की हुई है पॉडकास्ट को, जो कि आजकल नहीं बन सक रही मेरी ये जो शादी वादी किस्से इन वजह से। लेकिन वो वाली पॉडकास्ट में हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम वुमेन क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, तो आई थिंक हम लोगों ने
हाँ
दो पॉडकास्ट के एपिसोड वहां पे अपलोड किए हैं जलाल, वुमेन के बारे में
हाँ हाँ वो
जिसमें
की हुई है,
पाकिस्तानी।
बल्कि इवन
बिल्कुल
ये जो 2 एपिसोड पहले भी हमने बात की थी, जब पाकिस्तान ने हराया है पाकिस्तान की लड़कियों ने इंडिया को, तो उस पर हमने बात
इंडिया
की
को
थी।
बिल्कुल।
और ये भी बोला था जो विमेन्स लीग जो पीसीबी ने इनिशिएटिव लिया है उस पर भी हमने बात की थी, कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव लेने के बाद ही पाकिस्तान की लड़कियों ने हरा दिया थाईलैंड से हारने के बाद,
बिल्कुल
तो जबरदस्त है।
यार, वो श्रीलंका ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है आज वुमेन वाले ने,
अच्छा
मैंने
मैंने नहीं
खैर इस
देखा
तरह
उसको।
देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, देखा मैंने भी नहीं है, मैंने खाली वो देखे शॉर्ट्स वगैरह देखी है, तो वो बड़े एक अच्छा लग रहा था सीन।
उसमें भी अभी इंडिया और पाकिस्तान ही एशिया कप में लग रहा है फिलहाल तो मुझे।
वो देखेंगे जलाल, क्या कहते हो? आपको लगता है सुबह उठना पड़ेगा जल्दी?
यार इंडिया वाला मैच तो मैंने सारा देखा था, इंडिया और पाकिस्तान वाला लड़कियों वाला। इवन दो मेरी बड़ी लेट नाइट थी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी देख रहा था। लेकिन क्या कह सकते हैं यार, अब देखते हैं। मुझे अब डर लग रहा है फाइनल में इंडिया ज़रा वो नहीं, क्योंकि पहले मैच में हरमनप्रीत कौर ने पता नहीं क्यों अपने आप को नीचे वो ले गई, उन्होंने कहा मैं चांस दे रही थी लड़कियों को, और चांस देने के चक्करों में आउट हो गए। अगर हरमनप्रीत कौर ऊपर आ जाती तो शायद वो मैच निकाल जाती आराम से। तो देखते हैं क्या
बिल्कुल।
स्टोरी चलती है।
हाँ जी बिल्कुल, सही
जो
बात।
लोग देख रहे हैं सर जी, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर कंटेंट अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता तब भी हमें बताएं, कमेंट करके बताएं, या अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विच पे देख रहे हैं,
बिल्कुल
हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास
बिल्कुल।
बथेरे हैं, और वही बात है जैसा लास्ट टाइम मैंने कल उमेर बात कर रहा था, कि ये प्लेटफॉर्म हमने बनाई फैंस के लिए, कि भाई जिनकी आवाज़ जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस छोटी है और जिनकी आवाज़ पहुंचती नहीं है, हम वो प्लेटफॉर्म बन सकें जो लोगों की आवाज़ हो। और जिस तरह अब ये सारे हमें कमेंट कर रहे हैं, SS98 भाई, वुडू पाक भाई, इनके कमेंट्स हम शो कर सकें और एक प्लेटफॉर्म बन सकें, तो प्लीज़ हमारे साथ उस तरह
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल।
शामिल हुआ करें।
जरा एक नीचे एक मैसेज आया है, जरा वो पढ़े ना आप, मजा आएगा
ये मेरे मतलब क्या है सर?
देख के। ऐसे ये आपके मतलब के, इसीलिए बोल रहा हूँ आप पढ़े।
इट वुड बी अमेजिंग टू सी इफ टेम्बा बेवुमा रिप्लेसेस इन फॉर्म रीजा हेंड्रिक्स। यार देखो, मुझे तो SS98 भाई यही लग रहा है कि इनको तो इवन वर्ल्ड T20 में भी वुमा की जगह किसी और को कप्तानी देनी चाहिए, मे बी मिलर को, और उसकी जगह अब ये रीजा हेंड्रिक्स को खेलना चाहिए। अब आई डोंट नो कि इनका वो जो कलर वाला सीन होता है ना, कि कोटा सिस्टम जो इनकी टीम में होता है प्लेइंग 11 में, वो कितना ज़रूरी है, या उसकी वजह से शायद इनको, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स भी आई थिंक कलर्ड प्लेयर ही हैं, लेकिन आई डोंट नो कि क्या उनकी कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या उसकी वजह से हिंड्रेंस है, या बवुमा सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो कप्तान है। क्लियरली T20 में तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप अपनी लीग में ही ना सेलेक्ट हुए हो, नेशनल जो इनकी हो रही है लीग T20 की, किसी ने बिड ही नहीं किया इनको, तो फिर आप वर्ल्ड T20 के कप्तान, तो फिर बड़ा मुश्किल है यार आपके लिए। क्या ख्याल है?
यार मैं ये बिल्कुल सही बात है, और वही बात है कि अगर यहाँ पे अगर इनको यहाँ पे नहीं रखा गया साउथ अफ्रीका वाली लीग में, जो कि लीग सारी इंडियन ओनर्स ही उनको ऑन करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये आईपीएल में भी नहीं होंगे। आईपीएल में गए पहले ये कभी?
नहीं, आई डोंट थिंक सो यार। कभी भी इनका T20 का रिकॉर्ड, तो मेरा ख्याल है इनकी लास्ट कुछ अगर आप मैचेस देखो तो 100 100 भी स्ट्राइक रेट नहीं है इनका।
जलाल वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि हम लोग उस तरह नहीं गए क्रिकेट में, नहीं तो अगर आजकल के दौर में आते हैं हमारा तो कैरियर ही 50 ओवर्स होती है।
नहीं, हम भी फिर अजहर अली और फवाद आलम की तरह टेस्ट मैच ही खेलते हैं।
सही बात है यार, सही बात। यार बाकी जलाल वेस्ट इंडीज का यार बड़ा फिट वो गई है सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली, आई थिंक चल रही है अभी उसके कुछ मैचेस।
नहीं, होगी वो आपकी, क्या नाम है, अब तो इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हो गई है
यूए हाँ
यार। मुझे तो डिसअपॉइंटेड लगे हैं वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस, खासतौर पे बैटिंग में। मैं वही कल भी जिक्र कर रहा था कि
अच्छा
सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही होल नज़र आ रहा है, जिसका यहाँ पे बवुमा का मसला है, वहाँ पे स्टीवन स्मिथ का मसला है। ठीक है, वहाँ पे स्मिथ की जगह नहीं बन रही जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। इवन फिंच, फिंच का भी थोड़े से हैं क्लाउड्स, लेकिन फिंच के पास फिर भी आप कहते हो पावर गेम है, वो छक्के मार सकते हैं। स्मिथ पे तो बड़ा मसला नजर आ रहा।
यार अभी इनका स्क्वाड पे खैर अभी टाइम है ना इनके पास 4 दिन, तो अगर कैमरॉन ग्रीन को ये डालते हैं, डालेंगे वैसे?
यार अब देखो, फिंच अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक प्लानिंग तो यही है, क्योंकि ये अभी मैचेस जितने हुए हैं उसमें वार्नर वार्नर ऐसे फॉर्म में आ रहे हैं, फॉर्म वार्नर रन्स कर रहे हैं, तो कैमरून ग्रीन और वार्नर ने ही ओपनिंग की है, और मिचेल मार्श आई थिंक वन
हाँ
डाउन,
बिल्कुल
वो ज़्यादा वन
वन
डाउन ही
डाउन है
आना
मिचेल
चाहिए
मार्श।
उनको। तो स्मिथ की उससे जगह नहीं बन रही, क्योंकि पीछे देखो जॉस इंग्लिश भी आपके पास, और फिर मार्कस स्टोइनिस वगैरह, कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श तीनों एक साथ खेलते हैं, तो आई डोंट थिंक कि स्मिथ को उस तरह बनते ही है उसकी जगह। वैसे बड़ी
यार
डायनेमिक
इनकी
बैटिंग
लाइनअप
लाइनअप
तो
है भाई
बहुत
इनकी।
लंबी है, वही मैं आपको वही अभी देख रहा था मैं कि आप देखें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो खेले हैं, सही है, वार्नर, ग्रीन, मिचेल मार्श, फिंच, मैक्सवेल, टिम डेविड, वेड, मतलब आपके
खतरनाक है
साथ
भाई।
तो ऐसे बंदे हैं ना कि खतरनाक है। वेड तो खैर बहुत ही खतरनाक है ना, इस पे भी खेल गया 39 साल
यार
का।
मैच विनर्स है ना, अभी मैक्सवेल चल नहीं रहा इनका, ठीक है, तो ये हिसाब है।
मैक्सवेल्स भी यार शुरू में काफी अच्छा था। अच्छा वुडो कह रहे हैं कि मुनीबा अली की बैटिंग और कीपिंग।
बिल्कुल यार, उनकी बैटिंग कीपिंग क्या, उनकी जो पीछे से बकअप करना वाली जो बात है वो भी, और ना सिर्फ इनकी बल्कि आई थिंक वो जो इंडिया वाले मैच में, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट इतने मैच वो विमेन क्रिकेट के रेगुलरली नहीं देखता, लेकिन जो मैंने कैचिंग देखी आलिया रियाज की, यार उमैर साहब टॉप क्लास, यार टॉप क्लास, इतने
लेवल हो
प्रेशर
गया।
मैच में इतने अच्छे कैचेस पकड़ना, हम अपने मेंस टीम से भी अक्सर देखते हैं कि प्रेशर कैच छूट जाते हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैच फील्डिंग की, और रमीज राजा ने भी बल्कि उनकी बड़ी तारीफ की कि भाई इतने अच्छे कैचेस तो हमारी मेंस टीम नहीं पकड़ती जितने विमेन्स क्रिकेट वालों ने पकड़े हैं।
क्या बात है, क्या बात है। नहीं यार चलो पॉजिटिव चीज है काफी यार एशिया कप के, मतलब ये जा रहे हैं इस तरह। हालांकि हम लोग जो पहले बात करते थे, हम कहते थे यार इनके काफी एक टाइम लगेगा इम्प्रूवमेंट में, लेकिन अच्छा चल रहा है, गुड सीन है।
भाई इनकंसिस्टेंसी तो अभी भी है, जिस तरह हमारी मेंस टीम में एक दिन पहले आप थाईलैंड से हार जाते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और अगले दिन आप इंडिया से जीत जाते हो वो भी कोई सोच नहीं सकता था, तो अजीब कहानी चल रही है भाई।
नहीं, सही बात है, ये तो चलता रहेगा, ये तो मेरे ख्याल में जलाल ये चीज चलती रहेगी, इस पे कोई चेंजेस यू आ ही नहीं सकती कभी।
हाँ नहीं, अभी देखते हैं ना विमेंस लीग जब होती है 1 2 साल 3 साल, जब फ्लरिश करेगी तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली टैलेंट आना शुरू हो जाएगा। लड़कियों को भी जिस तरह हम PGL में अंडर 19 के लड़कों को कह रहे हैं, तो लड़कियों के लिए भी प्रमोट ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी लीग की वजह से, और ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी क्रिकेट खेलने के लिए। तो जी ये हो गया। उमेर साहब मेरा ख्याल है अब इजाजत लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? काफी टाइम हो गया, 1 घंटा होने वाला
बिल्कुल,
ऑलमोस्ट।
हाँ जी बिल्कुल, इजाजत लेते हैं और वही बात है कि फीडबैक दें, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो हम उसको इम्प्रूव करें, ताकि, और
हाँ
वही बात है कि ये हमारा चैनल जो है ये बेसिकली फैन के लिए, फैंस के साथ इंटरेक्शन के लिए, जो कि क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए, तो बस यही है।
और आज एक और अनहोनी चीज हुई है कि उमेर साहब डिस्कनेक्ट नहीं हुआ
क्या?
आज आज इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, आज अभी तक साथ दे गया है। मतलब हर स्ट्रीम में कोई ना कोई बंद होता है इस तरह है।
मैं भी यही सोच रहा था यार, ये आज कैसे आज,
आज लगता है पाकिस्तान में इंटरनेट सही चल रहा है, कोई लगता है इमरान खान के जलसे नहीं हो रहे आजकल है।
और यार वो आ रहे हैं, इमरान खान का अभी स्टार्ट होने वाला है
लॉन्ग मार्च
डी चौक।
अल्लाह खैर करे, फिर तो हमारा नेट वेट गया भाई है।
नहीं भाई, कोशिश करें 4G, ऐसा करूंगा छत पे बैठ जाऊंगा।
चलो सही है यार, अपना ख्याल रखो और बाकी सब भी अपना ख्याल रखें, ठीक है जी।
चले जी,
ओके
जी,
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
अल्लाह हाफिज।